संबंध मनुष्यों की कर्मों में प्रवृत्ति सुख के लोभ से ही होती है, अर्थात सुख कर्म संग्रह में हेतु है। अतः आगे के चार श्लोकों में सुख के भेद बताते हैं।
सुखं क्रीडानिं त्रिविधं श्रेणु मे भरत सभ अव्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त मात्मबुद्धे प्रसादजम्।
36वां और 37वां श्लोक। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब तीन प्रकार के सुख को भी तुम मेरे से सुनो। जिसमें अभ्यास से रमण होता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है, ऐसा वह परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। व्याख्या। भरतर्षभ। इस संबोधन को देने में भगवान का भाव यह है कि भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम राजस तामस सुखों में लुब्ध मोहित होने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे लिए राजस और तामस सुख पर विजय करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने राजस सुख पर विजय भी कर ली है, क्योंकि स्वर्ग की उर्वशी जैसी सुंदरी अप्सरा को भी तुमने ठुकरा दिया है। इसी प्रकार तुमने तामस सुख पर भी विजय कर ली है, क्योंकि प्राणी मात्र के लिए आवश्यक जो निद्रा का तामस सुख है, उसको तुमने जीत लिया है। इसी से तुम्हारा नाम गुडाकेश हुआ है। सुखम तो इदानीम। ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति के तीन तीन भेद बताने के बाद यहाँ तू पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि सुख भी तीन तरह का होता है। इसमें एक विशेष ध्यान देने की बात है कि आज पारमार्थिक मार्ग पर चलने वाले जितने भी साधक हैं, उन साधकों की ऊंची स्थिति न होने में अथवा उनको परमात्म तत्व का अनुभव न होने में अगर कोई विघ्न बाधा है तो वह है सुख की इच्छा। सात्विक सुख भी आसक्ति के कारण बंधन कारक हो जाता है। तात्पर्य है कि अगर साधन जन्य ध्यान और एकाग्रता का सुख भी लिया जाए तो वह भी बंधन कारक हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर समाधि का सुख भी लिया जाए तो वह भी परमात्म तत्व की प्राप्ति में बाधक हो जाता है। सुख संगेन बदनाति। इस विषय में कोई कहे कि परमात्म तत्व का सुख आ जाए तो क्या उस सुख को भी हम न लें? वास्तव में परमात्म तत्व का सुख लिया नहीं जाता, प्रत्युत उस अक्षय सुख का स्वतः अनुभव होता है। साधन जन्य सुख का भोग न करने से वह अक्षय सुख स्वतः स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है। उस अक्षय सुख की तरफ विशेष ख्याल कराने के लिए भगवान यहाँ तू पद का प्रयोग करते हैं। यहाँ इदानीम कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन संन्यास और त्याग के तत्व को जानना चाहते हैं, अतः उनकी जिज्ञासा के उत्तर में भगवान ने त्याग, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति के तीन तीन भेद बताए। परंतु इन सब में ध्येय तो सुख का ही रहता है, अतः भगवान कहते हैं कि तुम उसी ध्येय की सिद्धि के लिए सुख के भेद सुनो। त्रिविधम श्रेणु में। लोग रात दिन राजस और तामस सुख में लगे रहते हैं और उसी को वास्तविक सुख मानते हैं। इस कारण सांसारिक भोगों से ऊंचा उठकर भी कोई सुख मिल सकता है, प्राणों के मोह से ऊंचा उठकर भी कोई सुख मिल सकता है, राजस और तामस सुख से आगे भी कोई सात्विक सुख है, ये बातें उन लोगों की समझ में ही नहीं आती और वे इन बातों को समझ ही नहीं सकते। इसलिए भगवान कहते हैं कि भैया वह सुख तीन प्रकार का होता है, उनको तुम सुनो और उनमें से सात्विक सुख को ग्रहण करो और राजस तामस सुखों का त्याग करो। कारण कि सात्विक सुख परमात्मा की तरफ चलने में सहायता करने वाला है और राजस तामस सुख संसार में फंसा कर पतन करने वाले हैं। अभ्यासाद रमते यत्र, सात्विक सुख में अभ्यास से रमण होता है। साधारण मनुष्यों को अभ्यास के बिना इस सुख का अनुभव नहीं होता। राजस और तामस सुख में अभ्यास नहीं करना पड़ता, उसमें तो प्राणी मात्र का स्वतः स्वाभाविक ही आकर्षण होता है। राजस तामस सुख में इंद्रियों का विषयों की ओर, मन बुद्धि का भोग संग्रह की ओर तथा थकावट होने पर निद्रा आदि की ओर स्वतः आकर्षण होता है। विषय जन्य, अभिमान जन्य, प्रशंसा जन्य और निद्रा जन्य सुख सभी प्राणियों को स्वतः ही अच्छे लगते हैं। कुत्ते आदि जो नीच प्राणी हैं, उनका भी आदर करते हैं तो वे राजी होते हैं और निरादर करते हैं तो नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि राजस और तामस सुख में अभ्यास की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सुख को सभी प्राणी अन्य योनियों में भी लेते आए हैं। इस सात्विक सुख में अभ्यास क्या है? श्रवण मनन भी अभ्यास है, शास्त्रों को समझना भी अभ्यास है और राजसी तामसी वृत्तियों को हटाना भी अभ्यास है। जिस राजस और तामस सुख में प्राणी मात्र की स्वतः स्वाभाविक प्रवृत्ति हो रही है, उससे भिन्न नई प्रवृत्ति करने का नाम अभ्यास है। सात्विक सुख में अभ्यास करना तो आवश्यक है, पर रमण करना बाधक है। यहाँ अभ्यासाद रमते पद का यह भाव नहीं है कि सात्विक सुख का भोग किया जाए, प्रत्युत सात्विक सुख में अभ्यास से ही रुचि, प्रियता, प्रवृत्ति आदि के होने को ही यहाँ रमण करना कहा गया है। दुखांतं च निगच्छति, उस सात्विक सुख में अभ्यास से ज्यों ज्यों रुचि प्रियता बढ़ती जाती है, त्यों त्यों परिणाम में दुखों का नाश होता जाता है और प्रसन्नता, सुख तथा आनंद बढ़ते जाते हैं। च अव्यय देने का तात्पर्य है कि जब तक सात्विक सुख में रमण होगा, अर्थात साधक सात्विक सुख लेता रहेगा, तब तक दुखों का अत्यंत अभाव नहीं होगा। कारण कि सात्विक सुख भी परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा हुआ है। आत्मबुद्धि प्रसादजम, जो उत्पन्न होने वाला होता है वह जरूर नष्ट होता है, ऐसे सुख से दुखों का अंत कैसे होगा? इसलिए सात्विक सुख में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सात्विक सुख से भी ऊंचा उठने से मनुष्य दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, गुणातीत हो जाता है। आत्मबुद्धि प्रसादजम, जिस बुद्धि में सांसारिक मान, बड़ाई, आदर, धन संग्रह, विषयजन्य सुख आदि का महत्व नहीं रहता, केवल परमात्म विषयक विचार ही रहता है, उस बुद्धि की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता से यह सात्विक सुख पैदा होता है। तात्पर्य है कि सांसारिक संयोग जन्य सुख से सर्वथा उपरत होकर परमात्मा में बुद्धि के विलीन होने पर जो सुख होता है वह सुख सात्विक है। यत तदग्रे विषमिव, यहाँ यत तत् कहने का भाव यह है कि यत जो सात्विक सुख है, तत् वह परोक्ष है, अर्थात उसका अभी अनुभव नहीं हुआ है, अभी तो उस सुख का केवल उद्देश्य बनाया है, जबकि राजस और तामस सुख का अभी अनुभव होता है। इसलिए अनुभव जन्य राजस और तामस सुख का त्याग करने में कठिनता आती है और लक्ष्य रूप में जो सात्विक सुख है उसकी प्राप्ति के लिए किया हुआ रसहीन परिश्रम यानी अभ्यास आरंभ में जहर की तरह लगता है, अग्रे विषमिव। तात्पर्य यह है कि अनुभव जन्य राजस और तामस सुख का तो त्याग कर दिया और लक्ष्य वाला सात्विक सुख मिला नहीं, उसका रस अभी मिला नहीं, इसलिए वह सात्विक सुख आरंभ में जहर की तरह प्रतीत होता है। राजस और तामस सुख को अनेक योनियों में भोगते आए हैं और उसे इस जन्म में भी भोगा है। उस भोगे हुए सुख की स्मृति आने से राजस और तामस सुख में स्वाभाविक ही मन लग जाता है, परंतु सात्विक सुख उतना भोगा हुआ नहीं है, इसलिए इसमें जल्दी मन नहीं लगता। इस कारण सात्विक सुख आरंभ में विष की तरह लगता है। वास्तव में सात्विक सुख विष की तरह नहीं है, प्रत्युत राजस और तामस सुख का त्याग विष की तरह होता है। जैसे बालक को खेल कूद छोड़कर पढ़ाई में लगाया जाए तो उसको पढ़ाई में कैदी की तरह होकर अभ्यास करना पड़ता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता तथा इधर उच्छृंखलता खेल कूद छूट जाता है तो उसको पढ़ाई विष की तरह मालूम देती है। परंतु वही बालक पढ़ता रहे और एक दो परीक्षाओं में पास हो जाए तो उसका पढ़ाई में मन लग जाता है, अर्थात उसको पढ़ाई अच्छी लगने लग जाती है, तब उसकी पढ़ाई के अभ्यास से रुचि प्रियता होने लगती है। वास्तव में देखा जाए तो सात्विक सुख आरंभ में विष की तरह उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनका राजस और तामस सुख में राग है, परंतु जिनको सांसारिक भोगों से स्वाभाविक वैराग्य है, जिनकी पारमार्थिक शास्त्राध्ययन सत्संग कथा कीर्तन साधन भजन आदि में स्वाभाविक रुचि है और जिनके ज्ञान कर्म बुद्धि और धृति सात्विक हैं, उन साधकों को यह सात्विक सुख आरंभ से ही अमृत की तरह आनंद देने वाला होता है। उनको इसमें कष्ट परिश्रम कठिनता आदि मालूम ही नहीं देते। परिणामे अमृतोपमम्, साधन करने से साधक में सत्वगुण आता है। सत्वगुण के आने पर इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता निर्मलता ज्ञान की दीप्ति शांति निर्विकारता आदि सद्भाव सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। सात्विक राजस और तामस ये तीनों गुण अंतःकरण में अमूर्त रूप से रहते हैं। इनका पता वृत्तियों से ही लगता है, जिसका वर्णन 14वें अध्याय में 11वें से 13वें श्लोक तक हुआ है। इन सद्गुणों का प्रकट होना ही सात्विक सुख का परिणाम में अमृत की तरह होना है। इसका उपभोग न करने से अर्थात इसमें रस न लेने से वास्तविक अक्षय सुख की प्राप्ति हो जाती है। परिणाम में सात्विक सुख राजस और तामस सुख से ऊंचा उठाकर जड़ता से संबंध विच्छेद करा देता है और इसमें आसक्ति न होने से अंत में परमात्मा की प्राप्ति करा देता है, इसलिए यह परिणाम में अमृत की तरह है। तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम, सत्संग स्वाध्याय संकीर्तन जप ध्यान चिंतन आदि से जो सुख होता है वह मान बड़ाई आराम रुपए भोग आदि विषयेंद्रिय संबंध का नहीं है और प्रमाद आलस्य निद्रा का भी नहीं है, वह तो परमात्मा के संबंध का है, इसलिए वह सुख सात्विक कहा गया है।